परम पूज्य श्री संतराम पीठ के नवम आचार्य श्री रामदास जी महाराज जी को वंदन करते हुए पद्म पुराण संक्षिप्त कथा प्रसंग में समागत सभी भक्तों को सूचित करते हैं, आज की कथा जो पुराणों का वंश विस्तार है, कौन से राजा हुए और किस राजा के कौन से पुत्र हुए, उनने क्या कर्म किया, क्योंकि वंशानुचरितम चैव पुराणम पंच लक्षणम। तो ये महाप्रतापी जो राजा हुए, इनके नाम के संकीर्तन का भी पुण्य फल प्राप्त होता है। जैसे हम हनुमान जी का नाम लेते हैं तो हनुमान जी का चरित्र स्मरण करते हैं तो हम में भी हनुमान जैसे बनने की इच्छा होती है। उसी तरह से जो राजा हुए, वीर राजा हुए, उन्होंने अपना चरित्र दिखलाया, कर्तव्य दिखलाया, उन राजाओं के संकीर्तन से हमारे अंदर तेजस तत्व की वृद्धि होती है। इसलिए पुराणों के हर आख्यान में कहा है, इस आख्यान को जो पढ़ता है इसको अमुक लाभ होता है। तो हर चरित्र से कोई न कोई शिक्षा लेनी चाहिए, वही शिक्षा यहाँ निहित है। जैसे पृथु का चरित्र बतलाया गया तो पृथु से यह पृथ्वी माता पृथु इतने प्रतापी राजा हुए कि पृथ्वी स्वयं उनको कन्या रूप में प्राप्त हो गई। और जब कोई कुछ दोष वाला होता है, उस दोष की निवृत्ति जब बड़ों के पास जाता है तो हो जाता है। पृथ्वी मंद फलात नृपाश्च कुटिलाः प्राप्ते कलौ दुर्युगे। तो सत्ययुग से कलयुग तक की आने की परंपरा में धीरे धीरे चरित्र का क्षय होता है। जो सतयुग में व्यवस्था होती है उससे क्षय होकर के त्रेता में कम हो जाता, द्वापर में कम हो जाता है, फिर त्रेता में कम होता है, फिर कलयुग में आते आते एकदम धर्म जो है मलिन पड़ जाता है। तो राजा की जरूरत होती है। तो पृथु राजा भी जब पृथ्वी सब कुछ ले लिया था तो पृथ्वी को दौड़ाए मारने के लिए उसी समय में पृथ्वी ने कहा कि महाराज, स्त्रियों पर जो है वध करना यह आपको शोभा नहीं देता है, क्योंकि स्त्रियां अवध्य हैं। उसमें भी पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर लिया कि गाय का रूप धारण कर लेंगे तो गाय का हनन नहीं किया जा सकता है। सबको मारते हैं लोग, लेकिन गाय को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि अघन्या गावः, जिनके हनन के बाद कोई प्रायश्चित का विधान नहीं है, ऐसे गाय को मारना नहीं चाहिए। इसलिए पृथ्वी गो का रूप धारण करती है। तो पृथु ने कहा कि मैं तुम्हें मारूंगा, भला क्यों, ये जो राजा का कर्तव्य होता है प्रजा का रक्षण करना, राजा उसे ही कहते हैं राजते जनानाम प्रजानाम हृदिषु स्वकर्तव्येन स्वकर्मणा स राजा। जो अपने कर्तव्य बुद्धि के द्वारा, अपने क्रियाओं के द्वारा अपने प्रजा को सुखी कर दे, प्रजा उसके राज्य में दुखी न रहे, चोर न रहे, डकैत न रहे, लोग निरातंक घूमे और सबको अपना अपना भाग हो, वह राजा राजा होता है। इसलिए उसका नाम राजा, जो प्रजा के अपने कर्तव्यों के द्वारा प्रजा के हृदय में राज करते विराजे, वह राजा। तो राजा पृथु का स्मरण करने से व्यक्ति को भय नहीं होता है और पृथ्वी पर वह विचरण करता है। तो पृथु के बाद जब वंशानुकीर्तन आता है, उस क्रम में कश्यप जी के अदिति के साथ संबंध गर्भ से विवस्वान नामक पुत्र हुए। वह विवस्वान की तीन स्त्रियां थी, एक स्त्री थी संज्ञा, दूसरी थी राजकी और तीसरी थी प्रभा। राजकी ने रैवत नाम के पुत्र का उत्पत्ति किया और प्रभा से प्रभात की उत्पत्ति हुई, जिसे हम प्रभात कहते हैं। लेनव विभूति आया प्रभात। संज्ञा विश्वकर्मा की पुत्री थी, उसने वैवस्वत मनु को जन्म दिया। कुछ काल के पश्चात संज्ञा के गर्भ से ही यम और यमुना, जिस यमुना मैया की हम आराधना करते हैं, जो यमराज इस संसार के जनसंख्या को बढ़ाने में रोकते हैं, नहीं तो जनसंख्या बढ़ जाएगी तो बहुत तकलीफ होगी, ऐसे जो यम हैं उनकी भी उत्पत्ति हुई। उनकी बहन थी यमुना और भाई ये थे यम, ये दोनों संज्ञा के गर्भ से उत्पन्न हुए। अब विवस्वान की जो पत्नी थी वह उनके तेज को नहीं सह पा रही थी, इसलिए उसने अपने जैसी एक छाया उत्पन्न की, अपने स्वरूप की। उस छाया के साथ भगवान सूर्य यह समझे कि हमारी पत्नी है, छाया के साथ उनका संपर्क हुआ और उससे एक पुत्र उत्पन्न हुए जिनका नाम पड़ा सूर्य से सावर्ण, छाया से शनिश्चर महाराज उत्पन्न होते हैं। इसीलिए कहते हैं छाया गर्भ संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। छाया के गर्भ से जो उत्पन्न होते हैं, नील अंजन वाले हैं और यम के बड़े भाई हैं, ऐसे शनिश्चर महाराज और उनसे तपति और बिष्टि, बिष्टि कहते हैं भद्रा को, ये भी दोनों उत्पन्न होते हैं। एक बार की बात है ना, यमराज जो हैं उनको वैराग्य चढ़ा। वैराग्य जब होता है तो व्यक्ति को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता। तो जब यमराज को वैराग्य हुआ तो यम देवता पुष्कर तीर्थ में गए, वही पुष्कर जहां पर ब्रह्मा जी का वास है। ब्रह्मा जी का मंदिर और कहीं देश में नहीं मिलता है, पुष्कर में है। वहां ब्रह्मा जी को शिव जी ने श्राप दिया था सत्य बोलने के कारण। तुम जा ही ब्रह्मन निज पुष्कराख्ये मत्सन निधौ पूजन भांग नहीं तुम उवाच विष्णु प्रतिचक्र पाणे भक्तोश नित्यम मम सन्निधाने। हे ब्रह्मा जी, आपने असत्य बोला है इसलिए आपको शाप देता हूँ, आपकी पूजा यहाँ नहीं होगी, आप पुष्कर में जाओ। और भगवान विष्णु ने सत्य बोला है इसलिए सत्य व्रत रूपी बोलने वाले विष्णु की पूजा, हमसे पहले ये पूजा के अधिकारी होंगे। इसलिए सत्यान नास्ति परो धर्म, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो पुष्कर तीर्थ में यमराज गए भगवान ब्रह्मा जी के यहाँ। वहां पर फल फेन और वायु इन सब का आहार लेकर के कठोर तपस्या करने लगे। 100 वर्षों तक उनकी तपस्या चली। अत्यंत कठोर तपस्या के बाद ब्रह्मा जी उनके तप से संतुष्ट हुए। तब यमराज को उन्होंने कहा कि भाई आपको हम लोकपाल का पद देते हैं, आप लोग का पालन करेंगे और पितरों के आप स्वामी रहेंगे, आपने तपस्या किया तो आप पितरों के स्वामी बन जाइए। और जो जगत के धर्म अधर्म लोग कार्य करेंगे उनका देखभाल करना भी आपका दायित्व रहेगा, इसलिए जो धर्मराज हैं उनके जो अनुचर परिचर हैं, हम जो कार्य करते हैं 24 घंटे वो उसको देखते रहते हैं, कौन सा प्राणी क्या कर्म कर रहा है। हम सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं कोई नहीं देखता है, ऐसा नहीं है। सोम सूर्य महाकाल महाभूतानि पंच चेता शुभा शुभ से कर्मणो नव साक्षिण। सोम मतलब रात को हो तो चंद्रमा, सूर्य दिन में सूर्य भगवान देखते हैं, यमः यम जो है हमेशा देखते रहते हैं, जो काल के अधिष्ठात्री देवता है यमः, उनका वो काल यमः काल महाभूतानि पंच च और आप कहीं भी रहेंगे, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये सब आपके कर्तव्य के साक्षी हैं। आप जो जो कर रहे हैं, आपके मन में भी जो किसी के प्रति पाप आया तो ये लोग जान जाते हैं। पवन देवता को हम नाक के द्वारा अंदर ले जाते हैं, फेफड़े में हमारे हृदय की बात जान जाते हैं। इसीलिए ईश्वर को सर्वज्ञ कहा, ये इनके दूत हैं। तो बतलाया कि आपको लोकपाल की पदवी देते हैं और प्राणियों के धर्माधर्म वृत्त को आप इसका लेखा जोखा रखेंगे, जिसके लिए चित्रगुप्त रखे जाते हैं, वो सब कुछ सभी प्राणियों का रखते हैं। तो तपस्या से ब्रह्मा जी को ये सब सारी चीजें धर्माधर्म का विवेक का निर्णय मिला। जो लोग धर्म करते हैं उन्हें धर्मराज आते हैं, और जो लोग धर्म न करके अधर्म करते हैं उनके लिए वो यमराज का काम करते हैं, संयमन का कार्य करते हैं, उनको दंड देते हैं। यह अभूतपूर्व कार्य है। कारण क्या है कि यदि पापियों को दंड न मिले और पुण्यात्मा पुरस्कृत न हो, इस संसार में सभी लोग ही पापी हो जाएंगे। इसलिए भला बुरा जो कुछ भी हमारा कर्तव्य है वह ईश्वर देखता है, ईश्वर उसका साक्षी है। इसलिए हमें संभल करके रहना चाहिए। धर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तम, जो धर्म है वह नर के वृत्त को जानता है। महाराज जी अभी वृत्त और प्रवृत्ति की बात कर रहे थे। वर्तनम वृत्ति, जो व्यवहार है वह वृत्ति है, और रोज रोज जो प्रवर्तना होती है वो प्रवृत्ति हो जाती है। जब एक दिन दो दिन जब कोई कथा का प्रसंग आया तो हमें लगा कि कैसे होगा, हम तो कभी कथा होता कहे नहीं है, लेकिन महाराज जी के पास आ करके हमारी प्रवृत्ति हो गई ऐसा लगता है। तो प्रवृत्ति में हम तो आए ही, और हमारे साथ ये दो संतानें भी पहुंच गई यहाँ। छाया के पुत्र जो शनैश्चर महाराज थे उन्होंने भी अत्यंत तपस्या किया। जब तपस्या किया तो ग्रहों का यह स्वभाव होता है कि जो उग्र तपस्या करते हैं, जो दीप्यमान होते हैं, उनका तेज लोगों में जाता है, लेकिन जो खुद छाया से उत्पन्न हो उसमें कौन सा तेज। जो खुद छाया से उत्पन्न हो, छाया मतलब अंधेरा, उसमें कौन सा तेज आएगा। लेकिन शनैश्चर महाराज ने भी तपस्या किया तो कहा कोई बात नहीं, आपने इतनी सारी तपस्या किया है तो आपको जैसे ग्रहों की समानता, आपके ग्रहों के बीच में आपको अधिष्ठित कर दिया जाता है, आप जो है ग्रहों की समानता आपको हम दे रहे हैं। तो शनिश्चर महाराज ग्रह बन गए। आज कलयुग में शनि मंदिर वाले लोग बहुत धनी हो जाते हैं, हनुमान जी के यहाँ लोग कम जाकर के शनि के यहाँ भी बहुत जाते हैं। शनि छाया ग्रह है यद्यपि, लेकिन शनि से सबको भय रहता है। शनि को दीप दान, शनि को भगवान लक्ष्मी नारायण जो है पीपल के पेड़ में आते हैं, कहते हैं कि भाई शनिवार के दिन हमारे पास जो दीप दान करेगा और नमो भगवते वासुदेवाय के द्वारा जल लोटा काली तिल चढ़ाएगा उसको तुम तंग नहीं करना, तो शनि महाराज उसको छोड़ देते हैं। आगे की कथा यह है कि सूर्य की दो कन्याएं थी, यमुना और तपती, ये दोनों ही नदी हो गई। वही तपती जो तापी है, ताप्ती हो गई, ताप्ती से तापी कहते हैं। साथ में जो विष्टि थे उनका स्वरूप भयंकर है, वह काल रूप में स्थित है, और विवस्वत जो मनु हुए सूर्य से उनके 10 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़े जो पुत्र थे उनका नाम इल था। इल सबसे उसमें ज्येष्ठ पुत्र थे। इल के नाम पर ही इस इलावर्त पड़ा, देश का नाम इलावर्त पड़ा, और इल पराक्रमी हुए। वो अपने राज्य की सीमाओं में परिभ्रमण करते थे। महाराज मनु ने उनको अपना राज्य दिया था इसलिए वो घुमा करते थे। एक बार प्रतापी इल रथ में बैठ करके घूम रहे थे कि भूल से भगवान शंकर जहाँ अपने पार्वती प्रिया उमा के साथ रहते हैं वहां पर पहुंच गए, जिस वन का नाम था सरवण। सरवण नाम से वह जगह प्रसिद्ध थी। होता क्या है कि भगवती ने भगवान शिव से कहा था कि जहां हम और आप रहे वहां कोई व्यक्ति न आए, वहां कोई पुरुष न पहुंचे, ऐसा आप कुछ हमें वरदान दे दीजिए। तो उन्होंने कहा देखो यहां जो कोई भी आएगा वो यहां पर पुरुष स्त्री का रूप धारण कर लेगा इस क्षेत्र में। तो उस श्रवण वन में जब इल पहुंचे तो वहां जा करके वह स्त्री के रूप में बदल गए और जो घोड़ा उनका था जिसके ऊपर वो आरूढ़ थी, आरूढ़ से चढ़े हुए थे, वह घोड़ा घोड़ी बन गई। ये बिना लिंग परिवर्तन के तपस्या, बिना कोई चिकित्सा के, बिना ऑपरेशन के लिंग परिवर्तन हो गया, स्त्रीत्व धर्म को प्राप्त हो जा रहे। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, जो इल थे वह इला बन गए। उन्होंने कहा कि ये क्या हो गया, मैं कैसे पुरुष से स्त्री बन गई, मुझे क्या हो गया। इसी सोच में वो पड़े थे कि उनके सामने एक बड़ी ही सुंदर पुरुष प्रकट हुआ, जिस पुरुष का नाम था बुध। वह इला के ऊपर बुद्ध की दृष्टि पड़ी। जैसे ही इला ने बुद्ध को दिखा, एक दोनों का आकर्षण एक दूसरे के प्रति बढ़ गया और बुद्ध भी उसे देख करके बहुत काम पीड़ित हो गए। यद्यपि बुद्ध ब्रह्मचारी के वेश में थे, ब्रह्मचारियों को स्त्रियों के तरफ देखना वर्जित है, तथापि वो अपने को रोक नहीं सके। उन्होंने इला से कहा देखो तुम मेरे पास आओ, अभी बिहार की बेला है। ऐसे उन दोनों का तो पूछी, इला ने पूछा भाई तुम कौन हो और मैं कौन हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मेरा भाई कौन है, मेरा बंधु कौन है, और जब तक ये पता ना हो तब तक किसी संबंध करना बड़ी कठिन बात होती है।